चर्चा का विषय है।
नमस्कार श्रोताओं, चर्चा का विषय है कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं सुबोध मिश्र और आज हम चर्चा करेंगे विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर। लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा प्रस्तावित थी। इस विधेयक का उद्देश्य विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करना है, लेकिन विपक्ष के हंगामे के बीच आज का सत्र स्थगित कर दिया गया और कोई भी चर्चा नहीं हो सकी। आज हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रफुल्ल केतकर और वरिष्ठ एडवोकेट्स अनूप अवस्थी और आशीष पांडे जी। आकाशवाणी में आप सबका स्वागत है।
धन्यवाद।
चर्चा की शुरुआत करते हैं अनूप अवस्थी जी से। अनूप जी, भारत में विदेशी अंशदान से संबंधित कानूनों का क्या इतिहास रहा है और अभी जिस संशोधन पर हम बात कर रहे हैं वो किस तरह से पहले के कानूनों से अलग है?
सुबोध जी, पहली बार कोई कानून जो आया 1976 में आया, जो FCRA फॉरेन रेगुलेशन, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है उसको रेगुलेट करने का, उसके पहले का जो रहा है पोस्ट इंडिपेंडेंस अप टिल 1976, उसमें हमारे पास विदेशी मुद्रा ज्यादा थी नहीं, तो कम से कम उसका जो उपयोग है किया जाए या सदुपयोग किया जाए और सावधानी पूर्वक और आवश्यकता अनुसार उपयोग किया जाए, ये उद्देश्य था। 1976 में जब सरकार ने देखा कि शायद कंट्रीब्यूशन बाहर से आ रहा है और वो प्रभावित कर रहा है जो संसदीय संस्थाएं हैं, राजनीतिक संघ हैं, शैक्षणिक और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को, तो उन्होंने ये FCRA पहला वो लेके आए और ये पनिशमेंट बेस्ड था और जो रेगुलेशंस उस समय चले आ रहे थे FCRA के साथ साथ जो फेरा रेगुलेशंस थे उनसे रिलेटेड था और ये भी काफी लंबे समय तक चलता रहा। 2010 में अगली बार जब नया एक्ट आया तो उसके पीछे का उद्देश्य ये था कि इकॉनमी खुल गई थी, बहुत सारा जो हमारा विदेशों से जो मिलना जुलना था या जो विदेशी करेंसी भारत में आ रही थी या जो लोगों के पास में फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहे थे उसको रेगुलेट करने की जो आवश्यकता थी और ज्यादा हो गई थी, तो इस कारण से कुछ व्यक्तियों, संघों, कंपनियों द्वारा जो विदेशी अंशदान था या हम जाते थे हमको हॉस्पिटैलिटी मिलती थी, विदेशी आतिथ्य मिलता था, उनकी स्वीकृति और उपयोग को विनियमित करने के लिए 2010 में ये एक्ट आया। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि अभी जो पीछे का क्रम रहा है, जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं करीब करीब 22,000 करोड़ के आसपास पर ईयर कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, तो इसमें दुरुपयोग का जो जोखिम है वो बहुत बढ़ गया है। जो प्रशासनिक स्तर पे उसको रेगुलेट करने से रिलेटेड चीजें हैं उनपे काफी चैलेंजेस आ गए हैं। और एक और भी चीज थी कि जो हमारा राष्ट्रीय हित है, हमारी लोक व्यवस्था है, राष्ट्रीय सुरक्षा है, तीनों को इससे प्रभावित देखा गया। इस कारण से जो नया अमेंडमेंट है 2026 का वो सरकार लेके आई है और एक बहुत ही बेहतर कदम है। और जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशंस आते हैं ठीक है आए, लेकिन वो जो हमारी सांस्थानिक जो संरचना है या हमारी जो इंटरनल सिक्योरिटी है उससे रिलेटेड कोई भी चीज, किसी तरीके की कोई गड़बड़ी ना हो पाए, इस पर फोकस करते हुए 2026 का ये अमेंडमेंट आया है। जी
जी आशीष जी, क्या आप अनूप जी की बातों में कुछ जोड़ना चाहेंगे, कुछ बारीकियों का उल्लेख करना चाहेंगे?
फॉरेन कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड हमारा जो लीगल फ्रेमवर्क है वो समय के साथ इवॉल्व हुआ है और उसका डायरेक्ट लिंकेज रहा है कि किस तरीके से फॉरेन करेंसी इंडिया में आ रही है। और जब देखिए फॉरेन करेंसी की हम बात करते हैं इंडिया में आती है तो दो तरीके से हम मोटा मोटा अगर समझना चाहें, एक हम जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है या कोई व्यक्ति इंडिया में होता है और बाहर अपनी सर्विसेज दे रहा होता है, सैलरी के माध्यम से आ सकती है, रिन्यूमरेशन आ सकती है, इस तरीके के फॉरेन कंट्रीब्यूशंस पर ये FCRA वाले प्रोविजंस नहीं लगते हैं। लेकिन कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस होते हैं जो कि डायरेक्टली एक चैरिटी की तरह दिए जाते हैं इंडियन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं उनको, उस तरीके के फॉरेन कंट्रीब्यूशंस का जिस अनुपात में एक तरीके से बढ़ोतरी हुई समय के साथ, उसको देखते हुए समय के साथ इस एक्ट को मॉडिफाई किया गया और लाया गया। अब अगर आप प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट की बात देखिए, मैं बात करता हूँ कि अनूप जी ने बिल्कुल सही बताया, प्रेजेंट एक्ट जो है वो 2010 में आया और उसके बाद उसमें कई बार चेंजेज आए समय के साथ जिस तरीके की जरूरत महसूस हुई। अब आज जिस कॉन्टेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं, जिस अमेंडमेंट के लिए हम आज चर्चा पर जुड़े हुए हैं, देखिए ये भी उसी दिशा में एक उठाया गया एक कदम के रूप में इसको देखा जाना चाहिए, बल्कि कि इस तरीके से कि ये कोई आमूल चूल परिवर्तन हो रहा है FCRA एक्ट में। देखिए पुराना सेक्शन 15 था वो ये कहता था, कोर प्रॉब्लम ये थी कि अगर कोई इंडियन ऑर्गेनाइजेशन या इंडियन सिटीजन इस चीज का वायलेशन करता हुआ पाया जाता है, जो भी टर्म्स कंडीशंस उसके लिए गवर्नमेंट ने अप्रूव किए थे फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए, उस केस में उसका फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाता है। या एक ऐसी सिचुएशन आ सकती थी जहां पर उसको जो रजिस्ट्रेशन मिला हुआ है वो लैप्स कर गया है, या उसने वॉलंटरली सरेंडर कर दिया उस ऑर्गेनाइजेशन या उस व्यक्ति विशेष ने। उस कैंसिलेशन, सरेंडर या लैप्स के बाद जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन आया हुआ है, अकाउंट में पड़ा हुआ है, या उस कंट्रीब्यूशन को यूज कर जो एसेट्स क्रिएट करी गई हैं, उनका क्या होगा, ये बहुत बड़ा सवाल था। और जिसकी वजह से बहुत सारी एक ग्रे एरिया में आने की वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज हो रही थी, लिटिगेशन हो रही थी, काफी हमने देखा कोर्ट में इस तरीके के मामले गए। अब इस ये ऑपरेशनल और लीगल जो लूप होल, क्यों एक ग्रे एरिया, इसको कहीं ना कहीं फिल करने के लिए प्रेजेंट एक्ट को लाया गया है, जहां पर एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी को, मेन प्रोविजन इस एक्ट में, अमेंडमेंट एक्ट में आ रहा है कि अब एक हम डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, जहां पर इस तरीके के सिचुएशंस जहां की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो रहा है या लैप्स हो रहा है, तब जो भी पैसा अकाउंट में बच रहा है या उस पैसे को यूज करते हुए जो एसेट्स क्रिएट करी गई है उनका मैनेजमेंट किस तरीके का होना चाहिए, उसके लिए एक प्रॉपर डिटेल्ड लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है। और न केवल लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया गया है मैनेजमेंट के लिए, बल्कि अगर कोई पर्सन उससे एग्रीव्ड है तो उसके लिए सिविल कोर्ट्स के जाने के लिए भी रास्ता खोला गया है। जी सुबोध जी।
जी, आइए सुनते हैं कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस पर संसद में क्या कहा है।
केरल के एमपी मेरे ख्याल से गलत फहमी में ये हंगामा कर रहे हैं। जैसे स्पीकर साहब ने कहा, ये एफसीआरए अमेंडमेंट बिल पहले इंट्रोड्यूस हुआ था, इसीलिए आज सूची में आया है। मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को कल भी बताया, आज भी बताया कि आज एफसीआरए बिल जो लिस्टेड है वो कंसिडरेशन के लिए टेकअप नहीं किया जा रहा है। और दूसरी बात, एफसीआरए को लेकर के गलत फहमी जो फैलाया गया है केरल में, ये ठीक बात नहीं है। एफसीआरए का जो ओरिजिनल बड़ा अमेंडमेंट 2010 में कांग्रेस ने जो लाया था, उसके बाद कई अमेंडमेंट आए हैं। इस बार जो अमेंडमेंट है ये फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आता है उसके रेगुलेशन के लिए और सही इस्तेमाल के लिए, नेशनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट, इसका ध्यान में रखते हुए पैसा का गलत इस्तेमाल ना हो, इसका निगरानी के लिए एक अच्छा कदम रहा है। और यही सरकार कर रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, किसी संगठन को टारगेट नहीं किया जा रहा है।
प्रफुल्ल जी, जैसा कि हमने अभी सुना, ये विधेयक किन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य से लाया जा रहा है। सरकार का तर्क है कि ये विधेयक विदेशी फंडिंग के प्रवाह को अधिक पारदर्शी बनाएगा। प्रफुल्ल जी, ये व्यावहारिक रूप से कैसे सुनिश्चित होगा?
हमको तो मूलतः ये समझना चाहिए कि एफसीआरए या फॉरेन फंडिंग, जो अभी लगभग 16,000 अलग अलग फॉर्म में ट्रस्ट एसोसिएशंस इसमें रजिस्टर्ड है और 22,000 करोड़ का एनुअल रेवेन्यू आता है। 2010 में जब ये नया कानून आया और बाद में भी 2016 में, 18 में और 20 में इसमें अमेंडमेंट्स हुई, तो जैसे अभी दोनों हमारे विधि तज्ञों ने बताया कि समय के अनुसार ये इवॉल्व हुआ। क्योंकि एक बात जो ध्यान में आई, सारे मल्टीपल चाहे ऑर्गेनाइजेशंस के एनुअल रिपोर्ट्स हो, उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो, उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसीज ध्यान में आई। एक, जिस विषय के लिए पैसा आ रहा है उस विषय के लिए उसका उपयोग हो, दूसरा उसका अनुपात जो है वो प्रत्यक्ष उस विषय के लिए हो, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज, ऑफिस मैनेजमेंट है, व्हीकल है, ट्रेवल है, इसमें ना हो, तीसरा इसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट टाइम पर ये हो। और ऐसे में यदि जो तीन प्रावधान है, जिसमें एक समय पर इसका रिन्यूअल नहीं हुआ तो, एक इसका कैंसलेशन हुआ तो, या तो फिर लैप्स हुआ तो, इन तीनों केसेस में इसका क्या करना। 2010 के एक्ट में भी इसके संबंध में विचार हुआ, लेकिन इसके लिए कोई एक प्रोसेस डिफाइन नहीं हुई, उसकी प्रक्रिया तय नहीं हुई। अब ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी और उसके आधार पर ये जो सारा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन की प्रोसेस हो, चाहे वो इनकंसिस्टेंसी पेनल्टीज के संदर्भ में हो, या यूटिलाइजेशन की टाइमलाइन हो, इन सबके संदर्भ में एक स्पष्टता लाने का प्रयास। अब इसमें राजनीतिक तौर पर जो बार बार विषय जो लाया जा रहा है वो मूलतः सारा का सारा लाया जा रहा है, और क्योंकि जैसे कि मंत्री जी ने भी कहा कि केरल के चुनाव के संदर्भ में, तो इसमें पहली बात तो हमको ये समझना चाहिए कि ये अमेंडमेंट केवल और केवल एक्सेप्टेंस और यूटिलाइजेशन जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का है या हॉस्पिटैलिटी बाय एनजीओज है, उसको किसी भी तरीके से राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, पब्लिक ऑर्डर, जो सुव्यवस्था है, राष्ट्र की सुरक्षा, इस पर इम्पैक्ट ना हो, इस दृष्टि से लाया गया है। उन्हीं को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत है जो ऐसा करते हैं। इसके ऑपरेशनल और लीगल गैप्स अभी भरने का काम चल रहा है और डिजिग्नेटेड अथॉरिटी इन्वेस्टिगेट करेगा तो जब इसमें फाइनेंशियल डिस्क्रिपेंसी होगी तभी तो ये आएगा। और इसमें एक महत्वपूर्ण प्रावधान है 16A7 का, जिसमें इसमें रिलीजियस कैरेक्टर जो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप का वो मेंटेन रखा जाएगा, इसका भी प्रोविजन है। और इसके कारण एक भय के विशिष्ट समुदाय को टारगेट करने के लिए, विशिष्ट प्रकार की एक्टिविटीज को टारगेट करने के लिए, ये पहले तो केरल से शुरू हुआ और फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बारे में सारी चर्चा शुरू हुई। तो मेरा ये मानना है कि भारत के बाहर से आने वाला नीतिगत विषयों पर आने वाला पैसा, चाहे वो शिक्षा के लिए आ रहा हो, स्वास्थ्य के लिए आ रहा हो, शेड्यूल ट्राइब या अन्य मार्जिनलाइज सेक्शन की वेलफेयर के लिए आ रहा हो, वो सही काम के लिए यूज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये एक, उसके लिए तो पर्याप्त प्रावधान पहले किए गए। और यदि नहीं हो रहा है तो ऐसे संस्थाओं या संगठनों पर क्या कार्रवाई हो उसकी प्रोसेस, और इसमें भी पर्याप्त, जिसको हम कह सकते हैं कि मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व है, यदि आपको इसके बारे में कोई दिक्कत है तो लीगल एक्सपर्ट्स इसके बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हैं। लेकिन यदि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी के किसी भी निर्णय के संदर्भ में किसी भी व्यक्ति को यदि कोई दिक्कत है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज में विद इन 90 डेज का इसको अपील करने का प्रावधान इसमें है। तो मुझे लगता है कि यदि उस पैसे का उपयोग सही तरीके से हो रहा है और कहीं पे भी राष्ट्रहित या राष्ट्रीय सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो किसी को भी इस बिल के कारण चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस ले भी सकते हैं और उसका सही कार्य के लिए उपयोग कर भी सकते हैं।
जी, केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने इस पर संसद में कहा था,
अधिनियम के क्रियान्वयन के दौरान यह अनुभव किया गया कि प्रावधानों में कुछ अस्पष्टता है जिसके कारण प्रशासनिक कठिनाइयां और प्रक्रियात्मक असंगतियां भी उत्पन्न होती रहती है। यह आवश्यक हो गया था कि एक स्पष्ट, संतुलित एवं क्रियान्वयन उन्मुख विधिक व्यवस्था स्थापित किया जाए जो प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए संस्थाओं के लिए पारदर्शी एवं उत्तरदायी ढांचा प्रदान कर सके, इसका उद्देश्य है।
अनूप जी, क्या आप इसके अनुपालन के व्यावहारिक पक्ष पर कुछ रोशनी डालना चाहेंगे?
जी, दरअसल जो 2010 का एक्ट था उसमें इस तरीके की क्लैरिटी नहीं थी कि कोई भी संस्था जो FCRA के अंतर्गत रजिस्टर होगी कितने समय तक रजिस्टर रहेगी, और अगर मिसमैनेजमेंट होता है या जिस उद्देश्य के लिए धन आया था उस उद्देश्य के लिए उसका उपयोग नहीं हो पाता है तो ऐसी स्थिति में उस संस्था को कैसे चलाया जाए, क्योंकि वेलफेयर एक्टिविटीज उससे लिंक्ड हैं। तो इस वजह से जो 5 वर्ष का यहाँ पे एक बड़ा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है कि 5 वर्ष बाद उनको अपना रिन्यूअल कराना पड़ेगा, जो भी संस्था होंगी, व्यक्ति होंगे, जो भी कंट्रीब्यूशन ले रहे होंगे, अपना जो उनका सर्टिफिकेशन होगा, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपने आप वो लैप्स हो जाएगा। और जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की बात कही गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है इस संदर्भ में कि यदि कोई भी विदेशी धन आता है और उसका किसी वेलफेयर स्कीम में उपयोग होता है तो जो संस्था बीच में आई है उसके मैनेजमेंट के कारण जो एंड यूजर है वो प्रभावित ना हो, तो इमीडिएटली जो बीच में डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है वो मैनेजमेंट का काम करती रहेंगी और उसकी जो ओवरटेकिंग है उससे रिलेटेड अगर किसी तरीके का किसी को ग्रीवेंस है और वो अनुचित तरीके से वो कहते हैं किया गया है तो उसके लिए वो अपने जो लीगल विकल्प हैं उनका उपयोग कर सकते हैं। तो एक तरीके से जो अमेंडमेंट्स हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशंस को बहुत ही व्यवस्थित तरीके से एंड यूजर तक लगातार पहुंचाने की जो प्रक्रिया है उसमें एक सशक्त गवर्नेंस का जो पहलू है उसके ऊपर उसका ध्यान रखते हैं और ये किसी के अगेंस्ट नहीं है। और जैसा कि अभी कहा हमारे विद्वान पैनलिस्ट ने कि जो लोग चीजों को ठीक से कर रहे हैं उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है और जहां चीजें गलत हो रही हैं वहां पे निश्चित रूप से राष्ट्रहित में, क्योंकि इसमें जो सिक्योरिटी है राष्ट्र की वो भी इन्वॉल्व है और जो फंडिंग हजारों करोड़ रुपए की हो तो ऐसी स्थिति में ये ध्यान रखना भी उचित है कि उस फंडिंग का जो किया जाना है उसके कुछ अवांछित उद्देश्य तो नहीं है। तो ये सर्वांगीण सुरक्षा, देश का हित और एंड यूजर उसको भी लगातार लाभ मिलता रहे, इस वजह से ये अमेंडमेंट्स आ रहे हैं और मुझे लगता है कि बहुत अभूतपूर्व और सुधार है और इन सुधारों से जो पूरी व्यवस्था है जो विदेशी धन के भारत में आने की और उसके जरिए तमाम वेलफेयर स्कीम्स जो चलती हैं उसके चलते रहने की, उस पे एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आएगा और ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी और ये सरकारी नियंत्रण का मामला नहीं है, ये है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे, तो मैं इस बात पे फोकस करना चाह रहा हूँ।
जी आशीष जी, अगर हम इस विधेयक पर गौर करें तो जो संशोधन है, क्या एनजीओस की फंडिंग और जो उनके खर्च का जो ऑडिट करने का मैकेनिज्म है, क्या वो पहले से बेहतर हो पाएगा? इससे
कोई भी कानून होता है किसी भी लोकतंत्र में वो एक वर्क इन प्रोग्रेस होता है, समय के साथ उसमें परिवर्तन आते हैं और वो परिवर्तन इसलिए लाए जाते हैं कि व्यवस्था को ज्यादा सुचारू रूप से चलाया जा सके। देखिए काफी समय से ये इस तरीके के एलिगेशंस लगते रहे हैं कि विदेशी जो चंदा है इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा था भारत में, एक क्रियोस क्रिएट करने की सिचुएशन कई जगह क्रिएट की गई, कई पब्लिक पॉलिसीज को इफेक्ट करने की कोशिश की गई, डेवलपमेंट जो वर्क डिफरेंट सेक्शंस में हमारे देश में चल रहा है उसको इफेक्ट करने की कोशिश की गई। अब एक तरफ ये सिचुएशन है और एक तरफ दूसरी सिचुएशन है कि हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं और डेमोक्रेसी में ऑब्वियसली सिटीजन्स के राइट होते हैं और उन राइट्स में ये भी शामिल हो सकता है कि अगर आपको बाहर से एक जायज तरीके से पैसा मिल रहा है एक जायज काम के लिए तो शायद आप उसको एक रेगुलेटेड फ्रेमवर्क में उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। किसी भी गवर्नमेंट के लिए जो चैलेंजिंग टास्क होता है इन दोनों चीजों में बैलेंस आप किस तरीके से बनाते हैं और यही इवोल्यूशन ऑफ लॉ है। अब देखिए एक सिचुएशन को आप हाइपोथेटिकल सिचुएशन को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि एक एक्सवाइजेड कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, उसको पैसा आता है लेकिन रजिस्ट्रेशन के समय उसने जो अपना ऑब्जेक्ट बताया था और उस ऑब्जेक्ट के तहत उसको परमिशन मिली फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने की, पैसा आने के बाद वो चीजें कंप्लीटली फॉलो नहीं हो रही, या एक चीज आप एक विशेष परिस्थिति जिसको कि ये अमेंडमेंट भी डील करने की कोशिश करता है वो ये है कि एक्स वाई जेड संस्था को रजिस्ट्रेशन के तहत चंदा एक्सेप्ट करने की परमिशन मिली और वो आगे चंदे को फॉरवर्ड कर देती है किसी ऐसी संस्था को जिसका कि ऑब्जेक्ट शायद नेशनल इंटरेस्ट में ठीक ना हो। अब इन सारी चीजों पर कैसे ध्यान रखा जा सकता है? ऑब्वियसली इसके लिए ऑडिटिंग और टाइमली रिपोर्टिंग एक बहुत बड़ा स्टेप है जो कि किसी भी एक्ट में होना चाहिए, इस पर कोई दो तर्क नहीं हो सकते हैं। प्रेजेंट अमेंडमेंट और इसके पीछे भी जो कोशिशें हुई है वो उसी दिशा में लिए गए एक सतत प्रयास है। फिर भी अगर आप देखें, अगर इस तरीके की किसी भी अगर पॉलिटिकल लेवल पर जो आर्ग्यूमेंट्स काउंटर आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं मैं उनकी बात नहीं करूंगा, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि डेजिग्नेटेड अथॉरिटी की तरफ से कोई एक ऐसा निर्णय लिया जा रहा है जिससे उसके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ऑल्दो उस संस्था का या व्यक्ति का ये मानना है कि उसने जिस पर्पज के लिए फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन का रजिस्ट्रेशन हुआ था उसको फुलफिल किया है, टाइमली उसकी ऑडिटिंग हुई है, टाइमली रिपोर्टिंग हुई है और बहुत ज्यादा उसको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में पैसा नहीं लगा है। एक ये हो सकता है कि आपको 100 रुपए मिलते हैं और 100 में आप 80 रुपए केवल अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में लगा रहे हैं जबकि आपका ऑब्जेक्ट कुछ दूसरा था और आप कहते हैं कि चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में 80 रुपए खर्च हो गए तो बचे हुए 20 रुपए को ही हम उस दूसरे कार्य में लगाएंगे। तो इस तरीके के जो मिसयूज हो रहे हैं, अगर ऐसा आर्ग्यूमेंट है कि विदाउट किसी मिसयूज किसी वेंडेटा के तहत कोई स्टेप लिया जा रहा है, कोई एक्शन लिया जा रहा है, रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जा रहा है या जो एफेक्ट्स उस कंट्रीब्यूशन से क्रिएट हुई है उसको फॉरेन जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसमें वेस्ट किया जा रहा है, तो आपको जैसे हमारे पैनलिस्ट ने बताया 90 डेज का टाइम लिमिटिंग दिया गया है जहां पर आप डिस्ट्रिक्ट जज को ऑब्वियसली देन पिक्यूनरी और ज्यूरिडिक्शनल जो भी पैरामीटर्स है बाकी दूसरे एक्ट्स उसको फॉलो करते हुए आप सिविल अथॉरिटीज को अप्रोच कर सकते हैं। जी
सांसद कमलजीत सहरावत ने इस विधेयक पर पत्रकारों को बताया,
फॉरेन फंडिंग को लेकर हमारे देश में जितनी भी एनजीओ काम कर रही थी उनको लेकर कहीं ना कहीं सबके मन में क्वेश्चन मार्क था और पिछले बिल 2010 का बिल है उसके बाद 2 संशोधन है और इस बार का जो बिल के अमेंडमेंट आ रही है वो देश में आने वाले फंड को ट्रांसपेरेंट करने के लिए है कि फंड की रियल टाइम मॉनिटरिंग होनी चाहिए, लेकिन इसमें जो इन लोगों का मुद्दा है मुझे लगता है कि वो व्यर्थ है। देश में एनजीओ के ऊपर कोई इस तरह का बैन नहीं है और फंडिंग को लेकर भी रूल्स रेगुलेशन को क्लियर किया गया है, ये भ्रम फैलाने की स्थिति है जो ये लोग कह रहे हैं, वरना एनजीओ देश के हित में काम करे इसके लिए एनजीओ के रूल्स को और अच्छे से मजबूत।
प्रफुल्ल जी, जैसा कि अभी हमने सुना ये संशोधन राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण है, क्या आप इसमें कुछ और जोड़ना चाहेंगे?
देखिए सुबोध जी, दो संदर्भ में जोड़ना चाहूंगा, जानबूझकर ये बता रहा हूँ, 2013 का केस था एक फॉरेन फंडेड एनजीओज के संदर्भ में, ग्रीन पीस इंडिया का। और मैं जानबूझकर 2013 का केस बता रहा हूँ, क्योंकि उस समय यूपीए गवर्नमेंट और उस कारण से उसने एक, क्योंकि टाइमली रिपोर्ट्स सबमिट नहीं किए थे ऑडिटेड, और उस समय की सरकार ने ये आरोप लगाया था कि ऑब्स्ट्रक्टिंग डेवलपमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया, इसके लिए इस पैसे का उपयोग हो रहा है। और ये सरकार की नहीं थी, किसी राजनीतिक दल की नहीं थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट, और इसके आधार पर लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ था। वैसे ही बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में हुआ है कि ह्यूमन राइट्स के नाम पर यदि आप माओवादी या कट्टरपंथी विचारधारा के आतंकवादी, इनके लिए ह्यूमन राइट्स के नाम पर पैसे का मोबिलाइजेशन करोगे तो वो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। अब जब हम खास करके माओवाद के विरोध में एक बड़ी लड़ाई ग्राउंड पर जंगलों में जीत चुके हैं, उनके विचारों पर बाहर से फंडिंग लाकर जो अर्बन एरियाज में एक्टिविज्म एनजीओज या ह्यूमन राइट्स के नाम पर करने वाले लोग हैं, उनका खतरा भारत की सुरक्षा के लिए, भारत में अशांति अस्थिरता फैलाने के लिए ये बहुत बड़ा विषय बनने की संभावना है। और ऐसे में ये हमारा सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प होना चाहिए कि ऐसा कोई भी मार्ग जो विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है भारत के राजनीतिक या सामाजिक विषयों पर, उससे हमारी राष्ट्र की सार्वभौमता और सुरक्षितता बचाने के लिए हमको सामूहिक रूप से प्रयास करने चाहिए। और उस संदर्भ में मैं इस अमेंडमेंट को देखता हूँ, और इसीलिए मैंने दो अलग अलग कालखंड के उदाहरण दिए, जहां पे एक जगह पे तो कैंसलेशन हुआ था, एक जगह पे कंप्लीट फ्रीजिंग हुआ था अकाउंट का, लेकिन उसकी एक प्रोसेस डिफाइंड हो, वो किसी एक सरकार या सरकारी अफसर के बारे में ना हो। आंध्र प्रदेश में एक केस उसमें भी हुआ था जिसमें एक स्कैम उसको कहा गया एफसीआरए लाइसेंसेस देने का। तो ऐसे में हम इस तरीके के आर्बिट्ररी प्रोसेसेस से बचे, जो इन्वेस्टिगेशन हो वो भी पारदर्शी हो और उस पर जो कार्रवाई हो वो भी पारदर्शी हो, ताकि जो एनजीओज या व्यक्ति या संघ संगठना जो भी इसके अंतर्गत विदेशी धन का अनुदान ले रहे हैं अंशतः, वो हर 3 महीने में अपना मिलने वाला कॉन्ट्रीब्यूशन उसके बारे में एक डिक्लेरेशन उनकी वेबसाइट पर भी दे, और समय समय पर नियमों के अनुसार उसका एनुअल रिपोर्ट और ऑडिट स्टेटमेंट भी दे। ये मूल विषय इसमें है, और इसके बारे में हमको सजग होकर, यहाँ पे ना कोई रिलीजन का संबंध है ना किसी प्रदेश का संबंध है, केवल और केवल राष्ट्रीय सुरक्षा में या राष्ट्रीय हितों के मुद्दे में विदेशी हस्तक्षेप ना हो, ये इसमें एक मूलभूत विषय ध्यान में रखा गया है।
जी प्रफुल्ल जी, आपके ही बात को आगे बढ़ाऊं तो विपक्ष इस पर जो मुद्दे उठाना चाह रहा है वो कितने प्रासंगिक हैं?
विषय अपने यहाँ पे कोई भी हो, उस पर राजनीतिक पक्ष विपक्ष रहेगा और उसके संदर्भ में अलग अलग भूमिका भी रहेगी, और उसमें मोबिलाइजेशन के अपने अपने तरीके से चुनावी राजनीति में प्रयास भी होंगे। उसमें कोई, ये लोकतंत्र का एक मैं मानता हूं कि अपरिहार्य पक्ष है, लेकिन जहां पे मैं समझता हूं कि ट्रांसफर ऑफ करेंसी से रिलेटेड इशू है, सिक्योरिटी से रिलेटेड इशू है, या फॉरेन इंटरफेरेंस या हस्तक्षेप से संबंधित विषय है, वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन सांस्कृतिक काम के लिए, आर्थिक विकास की प्रक्रिया के लिए, शिक्षा के लिए, इवन किसी धार्मिक कार्य के लिए, सामाजिक क्षेत्र में कार्य के लिए आ रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो आता ही है और लोग लेते ही है। लेकिन ऐसे में यदि कोई ये कहता है ये करते हुए उसका यूटिलाइजेशन कैसे हुआ मैं बताऊंगा नहीं, या जिस काम के लिए यूटिलाइजेशन हुआ करना था उसके लिए किया है या नहीं इसके बारे में भी स्पष्टता नहीं रखूंगा, या तो फिर जो किया है यूटिलाइजेशन वो भारत के हितों को, भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला है। इन तीनों कंडीशंस में, या तो फिर मेरा 5 साल पहले था लेकिन मैंने उसको रिन्यू ही नहीं किया, वो लैप्स हो गया, या एप्लीकेशन ही नहीं फाइल किया है, जो किया है वो ठीक से नहीं किया, या किया क्योंकि मैंने 5 साल का कंप्लायंस नहीं किया था इसलिए रिन्यू नहीं हुआ, तो ये सारी कंडीशंस ये बताती है कि आने वाले पैसा और उसका यूटिलाइजेशन इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप है, गड़बड़ी है। और ऐसे में क्या सरकार के पास उसको इन्वेस्टिगेट करने का और यदि उसमें कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कार्रवाई करने का अधिकार नहीं होना चाहिए? ये डेजिग्नेटेड अथॉरिटी केवल इसी के लिए है, और यही कारण है कि इसमें ऑलरेडी फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस में कौन कौन नहीं हो सकता ये भी स्पेसिफाई किया हुआ है। जैसे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, जजेस हो, लेजिस्लेटर्स हो, ये सब लोग ऑलरेडी इसमें से दूर रखने का प्रावधान है क्योंकि ये सीधे सीधे नीतिगत विषयों से जुड़े हैं। तो इन सारे कारणों से विपक्ष को भी मुझे लगता है कि इसके बारे में आज ये अच्छा हुआ कि किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट इसके संदर्भ में स्पष्टता करते हुए आ गया, लेकिन इस पर विस्तृत रूप से समाज में भी चर्चा होनी चाहिए। अभी तो आज बिल नहीं आ रहा है, तो आने वाले समय में ये जब भी आएगा या इसमें और भी कुछ सुधार करने की संभावना है तो उस पर भी कंस्ट्रक्टिव इनपुट हो, लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध ना हो, राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए विदेशी आने वाले धन का सही विनियोग कैसे हो, उसका विनियमन कैसे हो, इसके संदर्भ में सबको मिलकर सोचना भी चाहिए और उसके बारे में प्रावधान भी करना चाहिए।
अनूप जी, क्या ये संशोधन देश के लिए नीति निर्माण और सामाजिक अभियानों में बाहरी प्रभावों को सीमित करने में प्रभावी हो सकता है?
निश्चित रूप से। एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए, ये हमारा विदेशी धन का अर्जन नहीं है, ये सार्वजनिक कार्य के लिए, सामाजिक कार्य के लिए जो विदेश से धन का कंट्रीब्यूशन है उससे रिलेटेड चीजें हैं। और अगर ऐसा है तो सबकी सार्वजनिक जिम्मेदारी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि उसका उपयोग पारदर्शी तरीके से उसी मद में हो जिसके लिए वो आया है। अन्यथा यदि इस प्रकार की जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जाएगी तो उसके बड़े खतरनाक किस्म के परिणाम हो सकते हैं। धन बल से कोई भी विदेशी शक्ति भारत में विदेशी धन का कंट्रीब्यूशन करके हमारी नीतियों को प्रभावित कर सकती है, और इस कारण से मुझे लगता है कि अभी जो आने वाला बिल है उस पर प्रभावी चेक लगाएगा और जो भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो उसी मद के लिए खर्च हो जिसके लिए उसको भेजा जा रहा है उसकी भी व्यवस्था रखेगा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही उचित और समीचीन उपाय अमेंडमेंट के रूप में केंद्र सरकार के द्वारा किया गया है।
जी आशीष जी, जो हमने अभी पैसों के दुरुपयोग की बात सुनी है और बेनामी या परोक्ष विदेशी फंडिंग की बात सुनी है, उस पर किस तरह अंकुश लगने की उम्मीद है?
जब भी हम किसी प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाते हैं, एक टाइम बाउंड उसमें प्रोविजंस देते हैं कि आपको इतने समय के अंतराल पर जो भी फॉरेन फंडिंग रिसीव हुई है उसको डिक्लेयर कर दी पड़ेगी, उसकी टाइमली रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, आपके जो एक्सपेंसेस है जिस पर्पस के लिए आप उसको यूटिलाइज कर रहे हैं फंड्स की, उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग। ऑब्वियसली जब इस तरीके के प्रोविजन लाए जाते हैं तो पारदर्शिता बढ़ती है, एक अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, और जिस विदेशी हस्तक्षेप की हम बात करते हैं एक उसके जो निगेटिव एस्पेक्ट है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने में हमको मदद मिलती है। देखिए, आकाशवाणी एक बहुत ही विशाल प्लेटफॉर्म है, तो मैं आपके माध्यम से एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब हम FCRA को कंट्रोल करने की बात करते हैं और सार्वजनिक मंचों पर जो डिबेट होती है तो एक ऐसा परसेप्शन बनता है कि एक बहुत ही हाई हैंडेड अप्रोच रहता है अथॉरिटीज का, और जहां भी विदेशी पैसे की बात आई तो एक बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है, मैं बिना आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज करे एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। करीब 2 महीने पहले एक ऐसा मामला मेरे पास आया, एक देश के एक संवेदनशील हिस्से में ये मामला हुआ। एक महिला थी और महिला के पति अब इस दुनिया में नहीं थे और उनके बच्चों की तबीयत काफी खराब रहती थी और इसकी वजह से उनको विदेश से कुछ पैसा प्राप्त हो रहा था, पिछले 2 सालों से प्राप्त हो रहा था। अब वो पैसा, देखिए FCRA एक्ट में भी प्रोविजन है कि अगर आपको पैसा रिलेटिव से मिलता है तो वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है, वो FCRA एक्ट में प्रोहिबिटेड कैटेगरी नहीं है। लेकिन चूंकि वो पैसा नॉन रिलेटिव से आ रहा था और कहना ये था उस महिला का, उसने इग्नोरेंस प्ले किया कि मुझको चीजें पता नहीं थी, और चूंकि संवेदनशील हिस्सा देश का था तो उसकी रिपोर्टिंग हुई इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से होम मिनिस्ट्री को, और टेक्निकली उसके जितने भी बैंक अकाउंट्स थे, 2-3 बैंक अकाउंट्स थे, वो सारे सीज कर दिए गए, ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। और उसकी वजह से वो महिला जो खुद पहले से फाइनेंशियल क्रंचेस को फेस कर रही थी उसको और भी ज्यादा दिक्कतें हुई। हुआ क्या कि होम मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स ने ही उसकी हेल्प करी, उसको सारी मतलब कोई टेक्निकल जो इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने में मदद करी। सो दिस ब्रेक्स द नैरेटिव दैट अथॉरिटीज आर एक्टिंग अगेंस्ट कॉमन सिटीजंस।
जी प्रफुल्ल केतकर जी, अनूप अवस्थी जी और आशीष पांडे जी, आपने बहुत विस्तार से विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 के कई पहलुओं पर अपने विचार हमारे साथ साझा किए। अत्यंत सार्थक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
आपको भी धन्यवाद।
धन्यवाद
श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।
चर्चा का विषय है।